यह प्रवचन श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 8 पर 28 अक्टूबर 1982 को मुंबई में श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज द्वारा दिया गया।
गोपी जाना बालाधारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वापदन्तिकं वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीलोपां सग्राजतं सहागना रघुनाथन्वितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजना साहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान सहागना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्ता कंचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानु सूते देवी प्रणमामि हरि प्रिय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे
धर्मासनु स्थितां चाम विश्वसेन कतासु यः नत्पदा यद्यति रतिं श्रम एव हि केवलम। तो इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी ये बता रहे हैं कि अगर कोई कार्य भगवान के प्रति आकर्षण नहीं उत्पन्न करे तो केवल वो व्यर्थ श्रम मात्र है। मतलब कि जो कार्य भगवान के प्रति आकर्षण नहीं उत्पन्न करे वो कार्य हमें करना ही नहीं चाहिए। कई बार प्रश्न ये उठता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उसका उत्तर इस श्लोक में दिया जा रहा है कि अगर कोई कार्य भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण नहीं उत्पन्न करे तो वो एक केवल व्यर्थ श्रम मात्र है। मतलब कि वो समय का गलत उपयोग है। तो हमें हर कार्य करते समय ये पहले देखना चाहिए कि ये कार्य करने से भगवान के निकट हम जाएंगे या भगवान से दूर जाएंगे। अगर ये कार्य करने से भगवान के प्रति आकर्षण होंगे, अगर भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होएगा, तो वो फिर वो कार्य ठीक है। पर अगर वो कार्य करने से भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होगा तो वैसा कार्य आध्यात्मिकवादी व्यक्ति करता नहीं है। वैसा कार्य जो है श्रम एव ही केवलम, श्रम एव ही केवलम का अर्थ है वो केवल बेकार का सा बेकार है। जैसे हम कहते हैं ना कई बार कि हमने समय बिता दिया बेकार में, असल में जो कार्य हमें भगवान के प्रति नहीं ले जाए, जो भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं करे, वो सब कार्य को बेकार का कार्य समझा जाता है। जिस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है, हरि हरि बिफरे जन्म गुनाइनु, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण न भाज्य जानिया शून्य बीषा खाइनो, कि हमने ये मानव शरीर प्राप्त किया है, पर मानव शरीर प्राप्त करके हमने राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, और क्योंकि मैंने राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, ये मानव शरीर प्राप्त करके मैं केवल जहर ही पी रहा था। तो इस श्लोक और तात्पर्य में ये समझाया गया है कि वही कार्य करना चाहिए जो कि भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करे। जो भौतिकवादी व्यक्ति है, जिस प्रकार से प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं, वो ये भौतिक शरीर के पार देख ही नहीं सकता। जब हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति भौतिक शरीर के पार देख नहीं सकता, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ यह है कि वो केवल ये भौतिक शरीर और इंद्रियों के संबंधित ही सोचता है। अगर हम केवल ये भौतिक शरीर के बारे में सोचें और ये आत्मा जो कि ये शरीर का असली मालिक है उसके बारे में नहीं सोचें, तो फिर ये जानवरों का विचार है। जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं वो केवल ये भौतिक शरीर के बारे में सोचते हैं और ये इंद्रियों के बारे में, और जब ये इंद्रियों के बारे में सोचते हैं तो फिर यही विचार करते हैं कि इंद्रिय तृप्ति किस प्रकार से किया जाए। इसलिए यहाँ ये बताया गया है कि जो भौतिकवादी व्यक्ति है वो अपना ज्यादा समय केवल अपने और अपने खानदान और अपने देश के लोगों की इंद्रियों की संतुष्टता में ही बिता देता है, और ये जो व्यक्ति है वो अंधा है क्योंकि उसमें ये आत्मा के विषय में कुछ ज्ञान नहीं है। और आगे तात्पर्य में प्रभुपाद जी ये भी समझाते हैं कि जो व्यक्ति मनगणन करते हैं, शब्द जंजाल करते हैं, वो व्यक्ति जो भगवान के संदेश का जो असली अर्थ है उसको छिपा देते हैं। जैसे कि प्रभुपाद ने भगवद गीता की भूमिका में कहा है कि एक अमेरिकन औरत ने उनसे पूछा था कि कौन सी भगवद गीता उन्हें पढ़नी चाहिए, और प्रभुपाद जी ने कहा कि सच्चे दिल से मैं उसको कोई गीता के बारे में बोल नहीं सका, क्योंकि लगभग हर अनुवाद में अनुवादक ने अपना भाव अर्थ डाल दिया है। तो अगर हम ये भगवद गीता के असली संदेश को समझना चाहते हैं तो ये अवश्य है कि हम ये भगवद गीता के संदेश को एक भक्त की सहायता से समझें। भगवद गीता में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि मैं तुमको ये ज्ञान दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे मित्र और भक्त हो, और इस कारण तुम ये ज्ञान को समझ पाओगे। तो ये भगवद गीता का जो ज्ञान है वो हम कोई शब्द जंजाल व्यक्ति की सहायता से नहीं समझ सकते, हम ऐसे व्यक्ति के सहायता से नहीं समझ सकते जो कि अपने भाव को बीच में मिलाने की कोशिश कर रहा है, जो अपने भाव का मिश्रण करने की कोशिश कर रहा है भगवान की वाणी के साथ, केवल उसकी सहायता से समझ सकते हैं जो कि भगवान की वाणी को यथा रूप उसी रूप से बगैर कुछ बदले हमारे सामने रखने को तैयार है। तो जो भौतिकवादी व्यक्ति है उसके पास ये आत्मा के विषय में कुछ ज्ञान नहीं है, और ना ही वो प्रयास करता है आत्मा के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए। भौतिकवादी व्यक्तियों से अगर आप ये सनातन आत्मा का वर्णन करो तो वो कहते हैं कि आत्मा तो है ही नहीं, इस जीवन की समाप्ति के बाद सब खत्म हो जाएगा, और किसने देखा है कि मृत्यु के बाद फिर जन्म होता है। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं वो कम बुद्धि के हैं, वो मन के पार कुछ सोच ही नहीं सकते, वो केवल ये भौतिक शरीर और मन तक ही सोच सकते हैं, पर मन के पार है बुद्धि। भूमि रपौ नलो वायु खम मन बुद्धि एव च। भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि मन के पार है बुद्धि, बुद्धि जो है उसे ये अध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, जिसके द्वारा वो भेद कर सके क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। जिस प्रकार ये पिछला श्लोक जिसका हमने चर्चा की थी थोड़े दिन पहले, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जन्यत्याशी विराग्यम ज्ञानम चाहिए धैतुकम। बुद्धि को वो ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जिसके द्वारा वैराग्य ये त्याग उत्पन्न हो। तो जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं वो अपनी बुद्धि का गलत उपयोग करते हैं। जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं वो ये बुद्धि का उपयोग करते हैं केवल यही बात सोचने में कि इंद्रिय तृप्ति कैसे बढ़ाया जाए। ये नहीं कि भौतिकवादियों के पास बुद्धि नहीं है, जैसे ये पश्चिम देश के जो लोग हैं, ये नहीं कि वहां के वैज्ञानियों में या इंजीनियर्स में बुद्धि नहीं है, पर वो बुद्धि का गलत उपयोग कर रहे हैं। और हमेशा बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं इस रूप से कि वो इंद्रिय तृप्ति को और सरल बना सकें। जैसे कि अभी विदेश के इंजीनियर्स ने एक नई चीज खोजी है जिसको वीडियो बुलाते हैं, आपने सुना होगा। तो ये पहले तो टेलीविजन होता था, है कि नहीं? तो वीडियो एक ऐसी चीज है कि टेलीविजन में जो प्रोग्राम आता है, अगर आप घर में हो भी नहीं, वो कैमरा ऑन कर दो तो वो जो भी टेलीविजन में प्रोग्राम आता है उसकी नकल कर लेता है। तो आप घर आके किसी समय भी वो प्रोग्राम देख सकते हो। मतलब ये नहीं कि उनके पास बुद्धि नहीं है, बुद्धि है, पर उसको गलत रास्ते में लगा रहे हैं। और पहले तो ये जैसे भारत में लोग खेल वगैरह देखने जाते हैं, हर जगह वहां भी लोग फुटबॉल वगैरह देखने का बहुत शौक है। तब उन्होंने एक नया इतना कैलकुलेटर छोटा सी मशीन बनाई है जिसमें तुम बैठ के सब खेल घर में ही खेल सकते हो। अभी वो प्लेन में जाते हैं सब वो खेल खेलते हैं, जैसे इंडिया में आप जाओ ना गाड़ी में तो ताश खेलते हैं तो वहां ताश नहीं खेलते, पर उन्होंने हर एक गेम को छोटे से कैलकुलेटर के माप के मशीन में डाल दिया है। तो ये नहीं कि उनमें बुद्धि नहीं है, बुद्धि है, पर वो बुद्धि का गलत उपयोग कर रहे हैं। बुद्धि का उपयोग करना चाहिए आत्मज्ञान के लिए, पर आत्मज्ञान की बजाय बुद्धि का उपयोग हो रहा है इंद्रिय तृप्ति के लिए या उस कार्य के लिए जिसके द्वारा वो भगवान को बदल भूल सके। और क्योंकि वो वैसा कार्य कर रहे हैं जिसके द्वारा वो भगवान को भूल सके, अंतिम नतीजा यह है कि निराशा ही निराशा बढ़ते जा रही है। हम ये नहीं देख सकते कि ये नहीं कह सकते कि सुख बढ़ते जा रहा है। अगर आप भौतिक निगाह से भी देखो, आध्यात्मिक निगाह से नहीं भौतिक निगाह से भी देखो, तो आप ये देखोगे कि जो दुख हैं, जो क्लेश हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। बेकार लोग जो हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। भारत में ही नहीं पर सारे संसार में जो आर्थिक समस्या आज समाज के सामने है वो इतनी बढ़ते जा रही है कि क्योंकि ये सब भगवान को भूलने की कोशिश कर रहे हैं। और हालांकि इन्होंने वीडियो गेम्स इंट्रोड्यूस की है, इन्होंने छोटी छोटी मशीनें बनाई हैं खेल की, इतनी और चीजें उन्होंने ढूंढी है, जब भी लोगों में निराशा ही निराशा है। आत्महत्या विदेश में बहुत ज्यादा है, इतने लोग आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों आत्महत्या इसलिए कर रहे हैं? क्योंकि वो निराश है, पर क्योंकि उनके पास ये ज्ञान नहीं है भौतिक शरीर आत्मा का अंतर क्या है, वो ये नहीं जानते कि आत्महत्या करने से उन्हें बाद में एक भौतिक रूप ग्रहण नहीं होएगा। वो ज्ञान उनके पास नहीं है कि ये भौतिक शरीर उनको प्राप्त नहीं होएगा, और इसके लिए वो सोचते हैं कि आत्महत्या करने से ये सब खत्म हो जाएगा और बस। तो ये लोग जो हैं वो अंधे हैं। तात्पर्य में प्रॉपर ये समझाते हैं कि प्रश्न वो उठाना चाहिए जिसके द्वारा आत्मा को संतुष्टता प्राप्त होए, और आत्मा जो है उसको संतुष्टता प्राप्त हो सकती है केवल अगर हम ये आध्यात्मिक विषय में समय को बिताएं। जो आत्मा है वो ये भौतिक शरीर और ये मन के पार है, और केवल आध्यात्मिक संदेश ही व्यक्ति को संतुष्टता दे सकता है। ये जो भक्ति का ज्ञान है, ये जो भक्ति की भावना है, वो हर व्यक्ति के हृदय में है, पर वो छुप छुपी हुई है। जिस प्रकार हर लकड़ में आग है, लकड़ी के अंदर आग है, केवल माचिस को लगाना पड़ता है तो लकड़ी एकदम जलने लग जाती है कि नहीं? उसी प्रकार रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि हर व्यक्ति में भगवान के तरफ भक्ति करने की भावना है, केवल साधु की सहायता से वो भावना को बाहर निकालना पड़ता है। तो जो साधु है वो हर व्यक्ति को मिलता है, इसी विचार से कि जो प्रेम की भावना है भगवान के तरफ हर व्यक्ति के हृदय में, उसको किसी न किसी तरफ किसी न किसी तरह जगाया जाए। तो ये भौतिक शरीर और जो मन है उन्हें संतुष्टता केवल आध्यात्मिक कार्य से मिल सकती है और भौतिक कार्य से नहीं। जिस प्रकार अगर एक चिड़िया पिंजरे में हो, आप केवल वो पिंजरे को भगवान बाहर से साफ कर दो और वो अंदर जो चिड़िया है उसको कुछ खिलाओ नहीं, तो वो ठीक नहीं है। पिंजरे को साफ करने की क्या है? पिंजरे को साफ कर दो और अंदर चिड़िया को कुछ खिलाओ मत। उसी प्रकार जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं वो पिंजरे को साफ कर रहे हैं। ये जो शरीर है जो आत्मा को ढक रहा है उसको संतुष्ट देने की कोशिश करते हैं, पर आत्मा जो हर व्यक्ति की असली स्वराज स्थिति है, जो कि सनातन है, उसको संतुष्ट देने की हम कोशिश ही नहीं करते। प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते थे कि एक समय एक व्यक्ति डूब रहा था, दूसरा व्यक्ति भी गया पानी में उसको बचाने के लिए, और उसका कोट और टोपी लेके वापस आ गया और सबको बताने लगा, देखो मैंने ये आदमी को बचा दिया है। जो आदमी था वो डूब गया और वो उसके कोट और टोपी को ले आया और बड़े गौरव से कहने लगा, देखो मैंने इसको बचा दिया। तो उसी प्रकार हम पिंजरे की देखभाल कर रहे हैं, पर जो आत्मा है उसको तो हम मार रहे हैं। बेशक हम अच्छे अच्छे वस्त्र पहने, बेशक हम बड़ी मोटर में घूमें, पर ये सब कार्य का लाभ क्या है? कुछ लाभ नहीं है, क्योंकि ये जो भौतिक शरीर है, ये जो आध्यात्मिक आत्मा है, उसको ये भौतिक शरीर से स्वतंत्रता नहीं दिलाई। वाह, ये जो मानव देह है उसका असली महत्व यह है कि आत्मा को ये भौतिक शरीर से छुटकारा दिलाना और आध्यात्मिक शरीर ग्रहण करना। ये नहीं कि मुक्ति का अर्थ है भगवान के साथ एक बन जाना, नहीं। जो मायावादी लोग हैं वो ये कहते हैं कि वो ये सोचते हैं कि मुक्ति का अर्थ है भगवान के साथ एक बन जाना, पर भगवान के साथ एक नहीं बनते हम किसी स्थिति में भी। जो व्यक्ति है हम सनातन रहेंगे और हम भगवान के अभिन्न अंग हैं और सनातन अंग हैं। ये नहीं कि मृत्यु के पश्चात हम भगवान के साथ एक बन जाएंगे। तो ये जो भक्ति की भावना है वो हर व्यक्ति के हृदय में है, और ये उत्पन्न हो सकती है अगर हम साधु के संगत प्राप्त करें। ये उत्पन्न हो सकती है अगर हम ये श्रवणम कीर्तनम, ये भगवान के नाम सुनने का और जाप करने का ये माध्यम पर, ये मार्ग पर चलें। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी ये कह रहे हैं बड़े स्पष्ट रूप से कि हमें केवल वही कार्य करना चाहिए जिसके द्वारा भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो, और अगर कोई कार्य से भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होएगा तो वो कार्य केवल व्यर्थ श्रम मात्र है, तो कुछ कठिन नहीं है। अभी ये पहचानना क्या कार्य करना चाहिए क्या कार्य नहीं। जो कार्य भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है तो वैसा कार्य हमें करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति का जो कार्य है वो भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं करता। भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करने की बजाय वो माया के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है, और माया के प्रति प्रेम उत्पन्न करने का नतीजा यह होता है कि हम भगवान को भूलते हैं। तो माया और कृष्णा दोनों को आप एक साथ नहीं पा सकते। कई बार हमारा विचार यह होता है कि एक तरफ से हम आध्यात्मिक जीवन निभाएंगे और दूसरे तरफ से हम भौतिक विचारों को हृदय में रखेंगे या उनकी भौतिक इच्छाओं को भी पूरी करेंगे। इसका मुकाबला किया जाता है जैसे कि अगर हम आग जलाने की कोशिश करें और साथ में पानी भी फेंकें तो आग किसी स्थिति में जलेगी नहीं। तो इस कारण ये बताया गया है कि अगर हम ये हरे कृष्ण मंत्र का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो साथ में जो 10 नाम अपराध हैं उनको भी हमें मन में रखना चाहिए, वो नाम अपराधों से दूर रहना चाहिए। और इनमें एक अपराध है कि 10वां अपराध है कि भगवान का नाम लेने के साथ भौतिक इच्छाओं को हृदय में रखना। यहाँ बड़े स्पष्ट रूप में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया है कि ये प्रेम भगवान की तरफ उत्पन्न हो सकता है केवल अगर हम भगवान की दिव्य लीला की चर्चा सुने। अगर हम भगवान की दिव्य लीला की चर्चा सुने, अगर हम भगवान का नाम सुने, तो ये जो हृदय में मैल है, अभद्रानी, बुरे विचार हैं, भौतिक विचार जो हैं, वो निकल जाएंगे। ये जो भगवान की कथा है, ये जो भगवान का नाम है, इनमें इतनी शक्ति है कि कितने भी बुरे विचार हृदय में क्यों ना हो उनको वो निकाल सकते हैं। शन्वता स्वाकत कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय भद्रानी विदुनोति सुरत सतम। तो चाहे ज्ञान से या अज्ञान से, ज्ञान से या अज्ञानता से, अगर कोई भगवान के नाम की तरफ आकर्षित हो, अगर कोई भगवान का नाम लेना शुरू कर दे तो अवश्य ही ये जो भौतिक विचार हैं वो निकल जाएंगे। चेत दर्पण मार्जनम चेतन महाप्रभु जी ने स्वयं कहा है कि अगर हम ये मैल को हृदय से निकालना चाहते हैं तो केवल ये हरि नाम लेना चाहिए। मैल का अर्थ है बुरे भौतिक विचार जो कि जिम्मेदारी लेते हैं हमें भगवान से दूर ले जाने के लिए। जब तक भौतिक विचार रखेंगे हृदय में, जब तक हम भगवान के निकट नहीं जा सकते। जिस प्रकार जब आपको बुखार हो तो आपको खाने का टेस्ट नहीं आता, पर जब आपका बुखार कम हो जाए तो हर एक चीज का मनोरंजन आप खुद ही प्राप्त कर सकते हो। तो उसी प्रकार जब तक हमें भौतिक इच्छाओं को हृदय में रखेंगे, जब तक ये हरे कृष्ण मंत्र का पूरा लाभ नहीं उठा सकेंगे। कई बार कीर्तन में नाचने का दिल नहीं करता, क्यों? कई बार भगवान के प्रति संदेश सुनने का दिल नहीं करता, क्यों? कई बार सुबह मंगल आरती में जागने का, मंगल आरती में आने की इच्छा नहीं रहती, क्यों? इन सब प्रश्नों का उत्तर केवल एक ही है, और वो है कि हम भौतिक इच्छाओं को रख रहे हैं हृदय में। और ये भौतिक इच्छाओं को क्योंकि हम हृदय में रख रहे हैं, इसके लिए वो हमें भगवान के प्रति आकर्षित होने नहीं दे रहे। तो ये जो भौतिक इच्छाएं हैं उनको एकदम हृदय से निकाल देना चाहिए, और वो स्वयं वो हो सकता है अगर मैं हरे कृष्ण मंत्र की शरण लें और ये 10 नाम अपराधों से दूर रहें। तो ये हमें पहचान लेना चाहिए कि यहाँ जिस प्रकार सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि केवल वो ही कार्य करना चाहिए जिसके द्वारा भगवान के प्रति आकर्षण प्रेम उत्पन्न हो। तो ये जो भौतिक इच्छाएं हैं, भौतिक विचार हैं, वो भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं कर सकते तो वो जो कार्य है वो केवल श्रम एव ही केवलम, वो समय का गलत उपयोग है। और चाणक्य पंडित जी ने कहा है आयुष किसान एक पीन लभे स्वर्ण कोटी भी, कि अगर हम समय का गलत उपयोग करेंगे तो ये समय को कितनी भी कीमत से हम वापस नहीं खरीद सकते। समय को एक बार आप जाया कर दोगे तो कितनी भी कीमत से कितना भी धन से उसको वापस खरीद के नहीं ला सकते। इस कारण जो आध्यात्मिकवादी व्यक्ति है वो बड़ी सावधानी से अपने जीवन को निभाता है, हर मिनट का ठीक उपयोग करता है। और जो भौतिकवादी व्यक्ति है वो इस बात की पहचान नहीं रखता, और क्योंकि वो केवल ये भौतिक शरीर और मन और इंद्रियों के बारे में सोच रहा है, वो सदा इनको ही संतुष्ट करने की कोशिश करता है। तो हमें वो ही कार्य करना चाहिए इस श्लोक के अनुसार, जिसके द्वारा भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करें। और उसका मतलब है वही कार्य जो कि गुरु और साधु और शास्त्र कहते हैं। ये नहीं सोच सकते कि भगवान के प्रति प्रेम हम गलत कामों से उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे कई बार लोग को सोचते हैं भंग पी के हम भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करेंगे, कई बार लोग सोचते हैं नहीं सिनेमा जाके भी हम भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करेंगे। नहीं, भगवान के प्रति प्रेम उसी कार्य से उत्पन्न हो सकता है जिस कार्य की इजाजत साधु गुरु और शास्त्र देते हैं। और साधु गुरु और शास्त्र जो हैं उन्होंने सीमा बनाई है जिसके अंदर हम चल सकते हैं। मतलब यह है कि हमें उसी रूप से भक्ति करनी चाहिए जिस रूप से साधु गुरु और शास्त्र कहते हैं करने को, और वही कार्य करना चाहिए जिसके द्वारा भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो। हरे कृष्ण।